तद् विष्णु परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयः दिवेव चक्षुरातितम् त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणम् त्वमेव सर्वं मम देव करुवंदना में दीनानाथ तेरी करुवंदना में दीनानाथ तेरी मुझे अपने चरणों का दे दो सहारा कश्ती भवन में रही डगमगा है कश्ती भवन में रही डगमगा है भव सिंधु का मुझको दिखा दो किनारा करुवंदना वंदना वंदना मेरे भाव पुष्पों को स्वीकार कर लो मेरे भाव पुष्पों को स्वीकार कर लो मेरी वाणी में भगवान चमत्कार भर दो हे प्रभु बस यही एक वर दो के कण कण में दे वासी तुम्हारा कण कण में देखूं मैं वासी तुम्हारा मुझे अपने चरणों का दे दो सहारा करूं वंदना मैं दीनानाथ तेरी मुझे अपने चरणों का दे दो सहारा करूं वंदना 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 धर्म के अभिलाषी भद्र पुरुषों सम्मान के योग्य मातृशक्ति इस संसार सागर में जिधर भी देखते हैं चारों तरफ हाय पैसा यही दिखाई देता है। यह भी सत्य है कि बिना पैसे के भी मनुष्य का काम नहीं चलता है। संसार में कोई भी कार्य करें पैसा बहुत जरूरी है। यहीं तक नहीं परमात्मा की भक्ति में भी अगर जीवन लगाएं परमात्मा की भक्ति भी अगर करें तो उसमें भी पैसे की आवश्यकता होती है। लेकिन हमारे महापुरुष कहते हैं कि पैसा बहुत कुछ है जीवन में लेकिन जिसने भी इस पैसे को सब कुछ माना है समझो उसी का जीवन बर्बाद हो गया है। आज संसार में देखने में आता है कि पैसे के कारण भाई भाई आपस में लड़ जाते हैं पैसे के कारण रिश्तेदारियां टूट जाती हैं और ये तो दूर की बात है पैसे के कारण शादियां रुक जाती हैं। आज इस लालची समाज में दहेज के ना देने के कारण कितनी बहनें जल करके अपने आप को भस्म कर देती है। ये पैसा ही आज सब कुछ बन गया है। ऋषि मुनियों का कहना है कि पैसा सब कुछ नहीं होता, अपने जीवन की कुछ अच्छाइयां भी होती हैं, प्रेम और प्यार भी जीवन का कुछ होता है। हमारा इतिहास बतलाता है जिन जिन महापुरुषों ने अपने जीवन को प्रेम और प्यार में बांध करके रखा है, पैसे को, धन दौलत को, राजपाट को दूर रखा है, आज उन्हीं का नाम तो संसार में अमर है। वेद भगवान कहता है अस्तु वयम श्याम पतयो धन रहीना, हम धन ऐश्वर्यों के स्वामी बने, दास बनकर के ना रहे। दास बनेंगे तो फिर दुखी होंगे, परेशान होंगे। आज मैं प्रसंग आपकी सेवा में निवेदन कर रहा हूं जिसके माध्यम से हमें बड़ा संदेश मिलता है कि धन दौलत हमेशा हमारे साथ नहीं जाती है। इस धन दौलत के पीछे इतने ना पड़ जाएं कि अपने रिश्ते नाते ही भुला बैठे। इसको दौलत कहते हैं, महापुरुषों का कहना है इसको दौलत इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके अंदर दो लात होती है। जब यह मनुष्य के पास में आती है तो एक लात इसकी कमर में लगाती है, इस सीना उभार करके चलता है, अपने से छोटे को नहीं देखता। दूसरी लात लक्ष्मी चंचला होती है, जब इसके पास से जाती है तो दूसरी लात इसके पेट में लगाती है, फिर यह गर्दन झुका करके चलता है, अपने से छोटे को फिर भी नहीं देखता। और लक्ष्मी की सवारी भी किसी समझदार ने बड़ी अच्छी बनाई है, उल्लू की सवारी। इसलिए दर्शाया है चित्रकार ने कि जिसके पास में लक्ष्मी पहुंच जाती है और बुद्धि नहीं होती उसका उल्लू बना देती है, उसका पागल बना देती है, जो लक्ष्मी के पीछे भागता भागता अपने मित्र जनों से भी द्वेष करता चला जाता है। वो प्रसंग याद करें, दिल में एक दर्द सा उठता है कि क्या आज हम केवल नाम नाम ही लेकर के रह गए। याद करें उस प्रसंग को रामायण के, जिस समय मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम, भगवती सीता, साथ में लक्ष्मण तीनों वनों को गए। यहीं पर पता चलता है वनवास तो केवल राम को हुआ था, लेकिन भाई लक्ष्मण भाई का साथ निभाने के लिए, बड़े भाई की सेवा करने के लिए साथ में गए, राजपाट को ठोकर मार दी। उधर जब महाराजा दशरथ बेहोश पड़े हैं और ननिहाल से भरत को बुलाया गया, पता चलता है क्या भाई भाई का प्यार होता है। महाराजा दशरथ ननिहाल से आए, अयोध्या के महलों में नहीं आए हैं, अभी अयोध्या नगरी में ही प्रवेश किया है, लेकिन अयोध्या नगरी के हाल चाल, चाल ढाल बदले बदले नजर आ रहे हैं। कवि के भाव हैं, अवध के रंज में डूबे हुए नर नार कैसे हैं, अवध के रंज में डूबे हुए नर नार कैसे हैं, समझ में कुछ नहीं आता कि ये आसार कैसे है, अवध के रंज में डूबे हुए नर नार कैसे है, अवध के रंज में डूबे हुए नर नार कैसे हरकत पेड़ पौधों में न खड़खड़ है हवाओं में के मानो पेड़ियां हो पड़ी गई कुदरती के पांव में, ये कैसी सनसनी फैली है चारों ही दिशाओं में, आज सहमे हुए बेजा और चुपचाप कैसे हो, समझ में कुछ नहीं आता कि ये आसार कैसे हैं। अवध के रंज में डूबे हुए नर नार कैसे खुशी का साज बजता था, जहां हर आदमी हर गम को एक सपना समझता था, जहां संगीत की लहरों में हर इंसान बहता था। आज टूटे हुए सब तार दिल के साज कैसे हैं, आज टूटे हुए सब तार दिल के साज कैसे हैं, समझ में कुछ नहीं आता कि ये आसार कैसे हैं। अवध के रंज में डूबे हुए नर नार कैसे हैं, अवध के रंज महात्मा भरत मन ही मन विचार करते हैं, आज अयोध्या नगरी में क्या हो रहा है। जिसके भी चेहरे को देखें मुरझाया हुआ दिखाई देता है, किसी को कभी कोई गम दिखाई नहीं देता था। और महापुरुष तो कहते हैं कि उस काल में उस समय में अगर किसी की आंखों में कभी कभी आंसू आते थे तो हवन के धुएं से आ जाते थे। मकान की छत अगर कुछ काली होती थी तो हवन के करने से मकान की छत काली होती थी। और आज सभी की आंखों में आंसू हैं। अयोध्या नगरी के तो महलों के हर घर में यज होता है, हवन होता है। ऐसे ही विचारों में पड़े हुए महात्मा भरत माता कैकेयी के पास में पहुंचे। माँ ने बेटे को देखा, एकदम से सीने से लगा लिया और कहा, बेटा तू ठीक तो है ना। महात्मा भरत ने कहा, हाँ माता जी सब ठीक है, मैं ठीक हूँ, लेकिन अयोध्या नगरी में आज ठीक ठीक तो नजर नहीं आ रहा। अपने बेटे की बात का कोई जवाब नहीं दिया। कहा, बेटा ये बताओ मेरे भैया तो ठीक है। महात्मा भरत कहते हैं, हाँ माँ तुम्हारे भैया ठीक है, लेकिन मेरे भैया राम मेरे भैया लक्ष्मण क्यों दिखाई नहीं दिए। फिर भी अपने बेटे की बात का कोई जवाब नहीं दिया। कहा, बेटा ये बताओ क्या मेरी भाभी तो ठीक है। महात्मा भरत कहते हैं, हाँ माँ तुम्हारी भाभी ठीक है, लेकिन मेरी माँ समान भाभी सीता कहाँ है। अभी भी कोई उत्तर नहीं दिया। अब की बार फिर कहा, बेटा ये बताओ मेरे पिताजी तो ठीक हैं। महात्मा भरत को कुछ गुस्सा आया और कहा, माँ मैं देख रहा हूँ अपने हर एक प्रश्न का उत्तर मुझसे ले रही हो, मुझे कोई जवाब नहीं दिया। तुम्हारे पिताजी तो ठीक हैं, लेकिन मेरे पिताजी कहाँ हैं। अब तो कैकेयी के पास में कोई प्रश्न रहा ही नहीं। मजबूर होकर के कैकेयी को कहना पड़ा कि बेटा तुम्हारे पिताजी तो इस संसार में नहीं है। दिल को एक धक्का सा लगा, आंखें रोने लगी और रोकर के कहते हैं, माँ इतना बड़ा हादसा हो गया और मुझे बताया तक नहीं, क्या भैया राम ने पिताजी की देखभाल नहीं की। कहा, बेटा वो तो पहले ही वनों को चले गए। जब ये सुना कि मेरे भैया राम मेरे भैया लक्ष्मण भाभी सीता तीनों पहले ही वनों को चले गए हैं, अब तो बड़े विहल हुए, बड़े दुखी हुए और कहते हैं, माँ एक बात बता, मेरे भैया राम वनों में क्यों गए हैं, क्या उन्होंने कोई पाप किया था। महर्षि वाल्मीकि अपनी रामायण में लिखते हैं कि महात्मा भरत ने कितने ही पाप गिनाए कि बताओ इनमें से कोई पाप मेरे भैया राम ने किया था। रोते रोते दुखी मन से भाई के लिए महात्मा भरत माता की कैसे कहते हैं, माँ बता तो सही, क्यों वन में गए श्री राम, क्यों वन में गए श्री राम, अब मुझको बता दे है माता, क्यों वन में गए श्री राम, अब मुझको बता दे है माता, क्यों वन में गए तो सही, क्या कोई पाप कमाया घर किसी ब्राह्मण का जलाया, किया कौन सा अनुचित काम, अब मुझको बता दे है माता, क्यों वन में गए श्री राम, क्या किसी का धन हर डाला या कोई जलाई गौशाला, क्या किसी का धन हर डाला या कोई जलाई गौशाला, किस गलती का ये परिणाम, किस गलती का ये परिणाम, अब मुझको बता दे माता, क्यों वन में गए श्री राम। गए राम के संग लघु भ्राता और संग में गई सिया माता, गए राम के संग लघु भ्राता और संग में गई सिया माता, क्यों नरेश ने बदला प्रोग्राम, क्यों नरेश ने बदला प्रोग्राम, अब मुझको बता दे है माता, क्यों वन में गए श्री राम, क्यों वन में गए श्री राम, क्यों वन में गए श्री राम। कहा मां बता तो सही, क्या मेरे भैया राम ने इनमें से कोई पाप किया था, क्या किसी ब्राह्मण का वध किया था, किसी के धन को चुराया था, किसी अबला से मुंह काला किया था, किसी बच्चे का वध किया था, बता मेरे भैया राम ने कौन सा पाप किया था जो उन्हें 14 वर्षों के लिए वनों में जाना पड़ा। इन शब्दों को सुनकर के केकई का मन एक बार को तो मानने पर मजबूर हो गया कि तेरा बेटा मानेगा नहीं। फिर भी इसने कहा, बेटा मैं बहुत देर से देख रही तू राम 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 करता जा रहा है, तुझे पता है तेरे पीछे तेरे साथ में कितना अन्याय हो रहा था, अरे तेरे पीछे तेरे पिताजी राम को राज दे रहे थे, बेटा मैं ये बात कैसे बर्दाश्त करती। तू निष्कंटक होकर के राज कर, मैंने तेरे लिए अयोध्या का राज मांगा है और राम को मैंने 14 वर्षों के लिए वनों में भिजवा दिया है, तुझे कोई चिंता नहीं है। इन शब्दों को सुनकर के महात्मा भरत, जो अब तक आंखों से आंसू बहा रहे थे, पिताजी के मरने के गम में, भाई की जुदाई के गम में, जब ये पता चला कि तेरे भैया राम अगर वनों को गए हैं, पिताजी की मृत्यु अगर हुई है तो उसका कारण तेरी सगी माँ के कई है, तो अब महात्मा भरत की आंखों में आंसू नहीं है बल्कि गुस्से में भर गए। और गुस्से में भर करके कहता है, मां एक बात बता, तब तूने भैया राम को 14 वर्षों का वनवास मांगा तो तेरे शरीर में वेदना नहीं हुई? और मां तेरी जीभ नहीं जली? गोस्वामी तुलसीदास तो कहते हैं, महात्मा भरत ने गुस्से में भर करके कहा कि मां एक बात बता, के वर मांगती वर मांगती उर भाई नहीं पीरा, जरऊ जी भी मुखी पर उनकी कहा। मां जब तूने भैया राम से 14 वर्षों का वनवास मांगा, तेरी जीभ नहीं जली, तेरे मुंह में कीड़े नहीं पड़े, तुझे मौत नहीं खा गई, मां तूने भैया को भैया से जुदा कर दिया। और महात्मा भरत एक बात कहते हैं, मां आज तो तुझे मां कहते हुए भी शर्म आती, तूने अपने बेटे की भावनाओं को नहीं समझा, और आज से तुम मन में कल्पना कर लेना, तुम मन में ये कल्पना करो, बेटा मैंने जन्मा ही नहीं, बेटा मैंने जन्मा ही नहीं। तुम मन में ये कल्पना करो, बेटा मैंने जन्मा ही नहीं, बेटा मैंने जन्मा ही नहीं। मैं समझूंगा बिन माँ का हूँ, मेरे कोई माता ही नहीं, मैं समझूंगा बिन माँ का हूँ मेरे कोई। मानो तो है संबंध सभी, मानो तो सारे नाते हैं, मानो तो सारे नाते हैं, मानो तो है संबंध सभी, मानो तो सारे नाते हैं, वरना सब जीव अकेले ही दुनिया में आते जाते हैं, वरना सब जीव तप कर बुझ कर हो गया ठोस। माँ अब ये हृदय तेरी तरफ से मुलायम नहीं है, तप कर बुझ कर हो गया ठोस, ये हृदय न कोमल परत रहा, ये हृदय न कोमल परत रहा, माता माता न रही अब से, ये भरत ने अब से भरत रहा, माता माता न रही अब से। कहा के माँ आज से तू मेरी माँ नहीं है, मैं तेरा बेटा नहीं हूं। और याद रख, तूने विचार नहीं किया है। उस केकई माँ से कहता है महात्मा भरत कि मां तूने विचार नहीं किया है, जिस मां के जिगर का टुकड़ा 14 वर्षों के लिए वनों में भटकने के लिए चला गया हो, उस मां के दिल पर क्या गुजर रही है। तेरा बेटा तो तेरे सामने है, मां कौशल्या से कभी पूछ करके देखा है कि इसके हृदय पर क्या गुजर रही है? और वाकई में मां कौशल्या उस समय रोते रोते दीवारों में, महलों की दीवारों में सर पटक पटक करके, रो रो करके कह रही थी कि बेटा राम मैं तुम्हें कहां से लाऊं। कहती है, मेरे राम मेरे लक्ष्मण सुनी नगरी सुना घर मेरे राम मेरे लक्ष्मण सुनी नगरी सुना घर बेटा तुमको माँ पुकारे मेरे राम मेरे लक्ष्मण सुनी नगरी सुना घर हाय भगवन ये हुआ क्यों हाय भगवन ये हुआ क्यों मेरी कैसे हुई गोद खाली हाय भगवन ये हुआ क्यों मेरी कैसे हुई गोद खाली कोई माता कैसे अपने को कहे भाग्यशाली आजा वापस आजा मेरे राम मेरे लक्ष्मण सुनी नगरी सुना घर तूने नहीं देखा दुख तूने ऐ बेटा कभी तूने महलों में दुख नहीं देखा है तू वनों में कैसे भटकेगा कैसे दुखी होगा बस यही याद करके तो हृदय भरा नहीं देखा दुख तूने कैसे वन में फिरेगा मारा मारा नहीं देखा दुख तूने कैसे वन में फिरेगा मारा मारा हाय किस्मत तूने हमको आज जीते जी क्यों मार डाला अब तो धीर बंधा जा मेरे राम मेरे लक्ष्मण सुनी नगरी सुना घर बेटा लक्ष्मण तेरे बिन में बेटा लक्ष्मण तेरे बिन में चैन पाऊंगी कैसे अवध में कौन जाने माँ की ममता कैसे भटके सघन घोर वन में हृदय भर भर आता मेरे राम मेरे लक्ष्मण सुनी नगरी सुना घर और अंतिम शब्दों में तो कहा अपनी बहू अपनी बेटी भगवती सीता के लिए कौशल्या ने के बेटी मेरी सीता तेरी माँ से याद कर कर के जिया नहीं जाए कैसे वन में कष्ट सहेगी ऐसी बातों से दिल घबराए कुछ नहीं बोला जाए मेरे राम मेरे लक्ष्मण सुनी नगरी सुना घर रो रो करके कहती है बेटा कहां से लाऊं कहां से देखूं ये आंखें तरस गई हैं केकई ने कहा बेटा राम मैं तुम्हें कहां से लाऊं, कहां से देखूं, ये आंखें तो तरस गई है। महात्मा भरत कहते हैं, मां पूछ के देखा है उस मां के दिल से कभी, जिस मां ने अपने बेटे को हृदय से लगा करके रखा हो, कभी अपनी आंखों से दूर ना होने दिया हो, और आज उसकी ममता 14 वर्षों के लिए वनों में भटक रही है। महात्मा भरत इतना कहकर के मानो भाई के प्यार में भगवान से प्रार्थना करते, हे प्रभु मैं आज जीना नहीं चाहता, संसार मुझे कहेगा कि भरत भाई को वन भिजवा करके राज कर रहा है, ये ताने ये कलंक मैं अपने माथे पर सहन नहीं कर पाऊंगा, हे भगवान मुझे संसार से उठा ले, मेरा जीने को मन नहीं है। परमात्मा भरत रोते रोते कहते हैं, अरी धरती बसब फट जा कि झट तुझी में समाऊं मैं, कि झट तुझ में समाऊं मैं, अरी धरती बसब फट जा कि झट तुझ में समाऊं मैं, कि झट तुझ में समाऊं मैं, ओ बिजली टूट पड़ मुझे पल भसम जल्दी हो जाऊं मैं, भसम जल्दी हो जाऊं तेरी करनी से है माता हुआ मैं शर्म सारे सा, तेरी करनी से माता हुआ मैं शर्म सारे सा, नहीं दिल चाहता अपना किसी को मुंह दिखाऊं मैं, किसी को मुंह दिखाऊं मैं, अरी धरती बसब फट जा कि झट तुझ में समाऊं मैं, कि झट तुझ में समाऊं। है काटा वो सजर तूने कि जिसकी साए रहमत में, ओ माँ तूने तो उस पेड़ को ही काट डाला जिसकी छाया में बैठकर कि हम अपने आप को आनंदित करते थे। है काटा वो सजर तूने कि जिसकी साए रहमत में, है काटा वो सजर तूने कि जिसकी साए रहमत में, सभी पाते थे हम राहत कहां से उसको लाऊं मैं, कहां से उसको लाऊं मैं, हरी धरती बस अब फट जा कि झट तुझे में समाऊं मैं, कि झट तुझे में समाऊं मैं। जुदाई से नहीं सकता मैं सीता राम लक्ष्मण की। जुदाई सह नहीं सकता मैं सीता राम लक्ष्मण की। सुबह होते ही बन जाऊं उन्हें वापस ही लाऊं मैं, उन्हें वापस ही लाऊं मैं। अरे धरती बस अब फट जा कि झट तुझ में समाऊं मैं, कि झट तुझ में समाऊं मैं। महात्मा भरत कहते हैं, भगवान मुझे अपने में समेट लो, मैं इस संसार में जीना नहीं चाहता। और ये कहता है, मां एक बात बता, तेरा बेटा तेरे सामने जिंदा खड़ा है ना, इसलिए तो तुझे चैन है, तुझे सब्र है, करार है। लेकिन इस मां के दिल पे क्या गुजर रही है आज तुझे एहसास हो जाएगा। भाई के प्यार में महात्मा भरत उस मां से कहते हैं, मां आज तुझे एहसास होगा कि बेटे की जुदाई का क्या गम होता है जब तेरा ही बेटा भरत भाई के लिए तेरे सामने अपनी पेट में तलवार मार करके अपने आप को समाप्त करे। वाह भाई का प्यार। महात्मा भरत अपनी माता कैकेयी के सामने कहता है, मां देख कि मेरे हाथ में नंगी तलवार है और अपने आप को समाप्त करूंगा। कैकेयी भी खड़ी खड़ी कांप रही है कि तूने क्या कर दिया है, तूने तो बहुत कुछ बर्बाद कर दिया। महात्मा भरत तलवार ऊपर करते अपने आप को मारना चाहते हैं भाई के प्यार में, लेकिन वो तलवार वाला हाथ ऊपर से नीचे को नहीं आया। उस तलवार वाले हाथ को किसी ने आकर के पीछे से कांपते हुए हाथ ने पकड़ लिया, रोक लिया। महात्मा भरत की तलवार नीचे नहीं आती है, ये मन ही मन विचार करता है, अरे ये मेरे तलवार को किसने रोका है। तो वो कांपते हुए हाथ से तलवार की तेज धार लगने से खून की धारा बहने लगी। महात्मा भरत घूम करके देखते हैं, देखो तो सही ये तलवार वाला हाथ किसका है। महात्मा भरत ने घूम करके देखा तो उसके अचंभे का ठिकाना नहीं रहा, वो कांपता हुआ हाथ किसी और का नहीं, वो रोती बिलखती तड़पती कौशल्या मां का हाथ था। उस कौशल्या मां ने पीछे से आकर के उस तलवार को रोक लिया था और रोते रोते बिलखते बिलखते कह रही थी, बेटा भरत मेरे दो बेटे तो मेरी गोद को सूनी करके चले गए हैं, क्या तुम संसार से जाना चाहते हो। अरे कौशल्या बस तेरे ही सहारे तो अब तक जीवित थी, मेरे राम मेरे लक्ष्मण बेटी सीता तो चले गए, बस यही तो एक सहारा था कि कोई बात नहीं मेरा बेटा राम भले ही चला गया हो, मेरी बेटी सीता मेरा बेटा लक्ष्मण भले ही चला गया हो, लेकिन मैं अपने राम की जुदाई को अपने लक्ष्मण की जुदाई को अपने बेटे भरत को सीने से लगा करके दूर कर दूं। और बेटा तू भी मेरी इस गोद को सुनी करके संसार से जाना चाहता है तो ये मां किसके सहारे रही। इन शब्दों को सुनकर के महात्मा भरत विलीन होकर के मां के चरणों में गिर गया और हाथ जोड़ करके कहता है, मां मैंने अपने भैया राम को वनों में नहीं भिजवाया। कुछ शब्द हैं कवि के भाव हैं। महात्मा भरत कहते हैं,
जिसने राम को वन भिजवाया, मां जिसने राम को वन भिजवाया, कृतघ्न जितना पाप कमाया, मां उसे पाप लगे, मां उसे पाप लगे, माँ से पाप लगे, माँ से पाप लगे।
कहा माँ उसे वो पाप लगे कि जो सवेरे सूरज निकलने के बाद सोने वाले को लगता है। महात्मा भरत बड़े पाप गिनाते हैं कि मुझे वो पाप लगे जो ब्राह्मण को मारने वाले को लगता है। माँ मैंने कोई पाप नहीं किया है, मैंने अपने भैया राम को वनों में नहीं भिजवाया है, और महात्मा भरत कहते हैं मां मैं यहां रहूंगा नहीं, मैं तो भैया राम को लेकर के आऊंगा। और एक बात और कही महात्मा भरत ने, मां मैं बड़ा न बनना चाहता हूं, अगर मुझे राज परमात्मा को देना ही होता तो भैया राम से 2 मिनट पहले संसार में भेज देता, पहले तो राम आए हैं, मैं तो छोटा हूं मां, मैं तो छोटा रहूंगा। मैं बड़ा न बनना चाहता हूं, रहने दो छोटा ही मुझको, रहने दो छोटा ही मुझको, रहने दो। मैं बड़ा न बनना चाहता हूँ, रहने दो छोटा ही मुझको, शासन का अनुशासन ना दो, करने दो सेवा ही मुझको, शासन का अनुशासन ना दो, करने दो सेवा ही मुझको, शासन। स्वामी उसका बनना अच्छा जो स्वामी पद के समुचित हो, जो स्वामी पद के समुचित हो, स्वामी स्वामी उसका बनना अच्छा जो स्वामी पद के समुचित हो, सेवक का स्वामी बनना तो अनुचित ही नहीं कलंकित हो, सेवक का स्वामी बनना तो। कहा कि मैं नहीं बनना चाहता स्वामी, मैं तो सेवक रहूंगा, मैं राजा नहीं बनूंगा। मुनि वशिष्ठ ने कहा कि देखो अगर तुम अब राजा नहीं बनोगे तो माता की आज्ञा का उल्लंघन करने का पाप तुम्हें लगेगा। जब माता आज्ञा देती है कि तुम राजा बनो तो राज करो, अगर नहीं करोगे तो फिर माँ की आज्ञा का पालन नहीं करोगे, पाप नहीं लगेगा। तो महात्मा भरत ने भी कमाल कर दिया। महात्मा भरत कहता है वशिष्ठ जी, गुरु जी बात तो आपकी ठीक है, लेकिन ये 2-3 शब्द बड़े खतरनाक होते हैं। लेकिन किंतु और परंतु बड़े खतरनाक शब्द हैं। किसी की आप तारीफ करो, कहो जी आप तो बड़े धर्मात्मा हैं, बड़े दयालु हैं, सत्संग में भी जाते हैं, दान भी करते हैं, लेकिन अब लेकिन कह दिया तो कुछ बुराई करेगा। महात्मा भरत भी कहते हैं गुरु जी बात तो आपकी ठीक है, लेकिन मैं उस बात का कभी भी अनुमोदन नहीं कर सकता। कौन सी बात का? माता की तुमको आज्ञा है तुम शासन करो अयोध्या का, यदि उसे त्याग दोगे बेटा तो उल्लंघन होगा आज्ञा का। तो महात्मा भरत कहते हैं गुरु जी मैं आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर रहा, मैं तो धर्म का पालन कर रहा, पर मैं माता की आज्ञा का उल्लंघन करता ही कब हूं, उस मत का जिसमें पाप लगे अनुमोदन करता ही कब हूं। हमारे विद्वान कहते हैं माता पिता की भी उस बात को मानो जिसमें धर्म है। अगर पिता कहता है कि बेटा देखो व्यक्ति तड़प रहा है, वो व्यक्ति परेशान है, उसकी मदद कर, उसकी सहायता कर, तो ये पिताजी की बात माननीय है, उसकी आज्ञा का पालन अवश्य होना चाहिए। और पिताजी कहे बेटा जा पास के घर में से चोरी करके ले आए, आज्ञा तो ये भी पिताजी की है लेकिन ये माननीय नहीं है, क्योंकि धर्म के विरुद्ध है, अधर्म है। इसीलिए महात्मा भरत कहते हैं पिताजी की आज्ञा या माताजी की आज्ञा का मैं कैसे पालन कर लूं जिसमें धर्म ही नहीं है। और महात्मा भरत यूं कहते हैं कि मैं अपने भैया राम की जुदाई बर्दाश्त नहीं करूंगा। कहते हैं गुरुजी जुदाई राम की हरगिज गवारा कर नहीं सकता, जुदाई राम की हरगिज गवारा कर नहीं सकता, बिना श्री राम के पल गुजारा कर नहीं सकता, जुदाई राम की हरगिज
गवारा कर नहीं सकता जुदाई राम की। जिस्म और जान का संबंध रघुनाथ से मेरा, किसी हालत में मैं उनसे किनारा कर नहीं सकता जुदाई राम की। हरगिज गवारा कर नहीं सकता करूं मैं ऐश महलों में भटकते वो रहे वन में, कभी मंजूर ये हृदय गवारा कर नहीं सकता जुदाई राम की। हरगिज गवारा कसम है राज पत्ती की कदम रखना नहीं मुझको, किसी हालत में मैं कहना गवारा कर नहीं सकता जुदाई राम की। हरगिज गवारा बिना श्री राम के की पल गुजारा कर नहीं सकता जुदाई राम की। हरगिज गवारा कर नहीं सकता।
कहा कि मैं अपने भैया राम की जुदाई बर्दाश्त नहीं करूंगा, मैं आज ही जाऊंगा और अपने भैया राम को वापस लेकर के आऊंगा। संसार के लोगों विचार करके देखो, राजे श्याम जी लिखते हैं कि महात्मा भरत की उस समय क्या हालत थी, क्या उन्होंने अपना वेश बनाया।
है दुनिया के लोगों देखो, धन होते धनपति निर्धन है, धन होते धनपति निर्धन है, धन होते है दुनिया के लोगों देखो, धन होते धनपति निर्धन है। राजपति की छवि है ये, शाही फकीर का दर्शन है ये राजपति।
विचार करके देखो, वो महात्मा भरत जिसको चक्रवर्ती राज मिल गया है, लेकिन भाई के प्यार में राज को ठोकर मार करके साधु का वेश बना करके वनों को चल देता है। साथ में अयोध्या के निवासी नारी नर सब जा रहे हैं, ऋषि भी साथ में है, माताएं भी साथ में हैं। कहते जब चलते चलते उस चित्रकूट के स्थान पर पहुंचे जहां मर्यादा पुरुषोत्तम राम कुटिया बना करके रह रहे थे और लक्ष्मण हर समय भाई की सेवा में रहते थे, हर समय भाई की सेवा करते रहते थे। वो तो सेवा में बैठे थे, एक छोटी सी पहाड़ी पर दूर से देखा एक धूल उड़ती हुई आ रही, खड़ा हुआ, ऐसा लगता है कोई राक्षस आ रहा है, राक्षसों की सेना आ रही है और मुझे तैयार रहना है। लेकिन जब वो धूल उड़ती हुई और पास में आई तो एक रथ था, रथ के ऊपर ओम का झंडा दिखाई दिया। अब समझ गया कि कोई और नहीं है, कोई राक्षस नहीं है। एकदम से वहीं से जोर से चिल्ला करके कहते हैं कि भैया राम जल्दी से बाहर आओ धनुष बाण लेकर। राम एकदम से बाहर आए और कहते हैं भैया लक्ष्मण क्या बात है, क्या कोई राक्षस आ गया है, क्या कोई दुष्ट आ गया है? कि दुष्ट राक्षस नहीं, लक्ष्मण थोड़ा जल्दी से उग्र हो जाते थे, लक्ष्मण बड़े तेज से गुस्सा जल्दी आ जाता था। गुस्से में भर करके कहते हैं कि राक्षस तो नहीं आया, लेकिन वो आया है। कौन? भाई को भाई नहीं कहा क्योंकि मन में घृणा है लक्ष्मण की। कहता वो केकई का बेटा भरत आ रहा है सेना लेकर के, हमसे लड़ने के लिए आ रहा है, वनों में भी हमें चैन से नहीं रहने देगा। आज मेरे कंधे पर धनुष बाण जो रखे हैं भाई के खिलाफ चलेंगे। इन शब्दों को सुनकर के मर्यादा पुरुषोत्तम राम मुस्कुरा रहे हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम राम हंस रहे हैं और हंसते हंसते कहते हैं भैया लक्ष्मण तुमने जो कहना था कह लिया, पहाड़ी से नीचे आ जाओ। तुम अपने भैया को नहीं समझे, तुम भरत को नहीं समझे हो, भरत के लिए शब्द कहते हो। राम ने एक बात और कही, भैया लक्ष्मण एक बात बताओ, मुझे तो राज चाहिए नहीं, अगर ये मारने भी आ रहा हो तो हम तो केवल दो हैं, वो पूरी सेना लेकर के आएगा, फिर भी हम कैसे मुकाबला करेंगे? तो लक्ष्मण ने कहा भैया क्या तुम मेरे साथ नहीं हो? राम ने कहा नहीं भैया मैं तेरे साथ नहीं हूं, भाई से नहीं लड़ सकता हूं। और बड़ी सुंदर बात अपने भैया लक्ष्मण को समझाई भगवान राम ने। कहते हैं लक्ष्मण सुन,
मंद मंद बोले रघुराई, मंद मंद बोले रघुराई, कौशल्या नंदन सुखदाई, नंदन सुखदाई, कौशल्या नंदन सुखदाई, मंद मंद बोले रघुराई।
धरती तल पर भरत सरिका, धरती तल पर भरत सरिका, नहीं कोई भाई,
मंद मंद बोले रघुराई, मंद मंद बोले रघुराई।
धर्म की राह पर चलकर पित्र आज्ञा पालन कर, कैसे तू मार भरत को इस निंदित राज की खातिर, मेरे जीवन घन के दिन वीर बल लक्ष्मण के दिन, राज की बात ही क्या है ए भैया तुम सब के दिन। हो ब्रह्मांड का राज मुझे तो पूरण दुखदाई,
मंद मंद बोले रघुराई, मंद मंद बोले रघुराई।
श्रेष्ठ सज्जन रक्षण को, प्रजा के सुख पालन को, राज की मेरी कामना, प्रजा के सुख चिंतन को, बंधु बांधव मिलते जो मार जो धन मिलता है, विष मिले भोजन के सम नहीं स्वीकार मुझे वो। खून बहाकर जो मिलती धिक्कार बादशाही,
मंद मंद बोले रघुराई, मंद मंद बोले रघुराई, हाँ बोले रघुराई, मंद मंद बोले रघुराई।
और अंतिम शब्द तो बड़े कमाल के कहे, अंतिम शब्दों में कहा उस माँ के कई की निंदा करता है, उस माँ का नाम लेता है जिसने हम सबको बहुत प्यार दिया है। महात्मा भरत की माँ जो के कई है ना, बड़ी महान है। राम कहते हैं उस माँ को जिसने वनवास दिलाया कि याद रख भैया लक्ष्मण,
न निंदा करके कई की मात है हम सब ही की, न निंदा करके कई की मात है हम सब ही की, वो माता परम श्रेष्ठ है प्रतिष्ठा मातृशक्ति की, चमकती नहीं वो ज्योति निकल जाते जब मोती, सुनो ए लक्ष्मण भैया।
बस इसी लाइन में तो कमाल की बात है,
सुनो ए लक्ष्मण भैया अगर के कई ना होती हो तो भरत महात्मा से सुनी रहती धरती माई। मंद मंद बोले रघुराई, मंद मंद बोले रघुराई।
अपने भाई को समझाते हैं कि भैया तू उस माँ की निंदा कर रहा है, मत कर, वो माँ बड़ी महान है। अरे वो माँ नहीं होती तो हमें महात्मा भरत जैसा भाई कहाँ से मिलता, ये धरती महात्मा भरत जैसे भाई से वंचित रह जाती। उस माँ की निंदा मत कर। अपने भाई को समझा ही रहे हैं लेकिन इतने में ध्यान बदल गए, इतने में पीछे घूम करके देखा एक पागल सा भागता हुआ आ रहा है, पैरों में खून बह रहा है, सर के बाल बिखरे हैं, चेहरा मलिन है। एक बाल को तो राम जी भी देखते हैं, अरे ये पागल कौन है। बहुत सुंदर राधे श्याम जी ने अंतिम शब्दों में कहा है उस पागल की क्या हालत थी।
नंगे थे पाव बाबरे के, कीचड़ मिट्टी में सने हुए, कीचड़ मिट्टी में सने हुए, कीचड़ मिट्टी में। नंगे थे पाव बाबरे के, कीचड़ मिट्टी में सने हुए, कुछ खून भी बहता जाता था, छोटे कांटे थे चुभे हुए, कुछ खून भी बहता। काले बाल धुरी धूसर, पीले चेहरे पर पड़े हुए, पीले चेहरे पर थे काले बाल धुरी धूसर, पीले चेहरे पर पड़े हुए। जिस तरह भयानक आंधी में हो सूर्य देव हो छिपे हुए, जिस तरह भयानक उस पर और उसकी हालत पर समझ गए ये पागल कौन है। राम जी ने देखा पागल को तो अस्त्रों की झड़ी बह गई और भागे अपने शरीर की सुदबुद्ध खो करके, और ऐसी सुदबुद्ध खोई कि अपना ध्यान ही नहीं। उस पर उसकी और हालत पर दर्दीली दृष्टि जमा करके, दर्दीली दृष्टि जमा करके, आगे को सीतानाथ बढ़े आ जानू भुजा फैला करके, आगे को सीतानाथ बढ़े। वो बेचैनी थी पढ़ने की, भाई के प्यार में वो बेचैनी थी, पता ही नहीं शरीर की सुदबुद्धि खो गई। वो बेचैनी थी पढ़ने की, कहीं धनुष कहीं पर तीर गिरा, तर्कस के साथ साथ कहीं पर वो मुनियों वाला चीर गिरा। बाबला चाहता है पहले भरत, बाबुला चाहता है पहले रघुवर के चरण चूम लूं मैं, रघुवर ये चाहते हैं पहले सीने से इसे लगा लूं मैं। आखिर रघुवर की विजय हुई, आखिर रघुवर की विजय हुई, हाथों पर उठा लिया उसको, हाथों पर उठा लिया उसको, जब चरण छुए इससे पहले सीने से लगा लिया उसको। जो भाई को सीने से लगाया, जब हृदय हृदय से आन मिले तो दुर्भिनय का ताप हुआ, सबने समझा इसी तरह चित्रकूट में भरत मिला हुआ। भाई भाई जब मिले, बड़ी कोशिश की भरत ने, भैया चलो, लेकिन नहीं, खड़ाऊ दे करके विदा किया भाई को। ये होता है भाई भाई का प्यार। आज हम भी उस प्यार को कायम रखें तभी सच्ची अर्थों में रामायण के साधक हो सकते हैं। सभी का धन्यवाद है, विचार करें और अपने जीवन को ऐसा बनाएं। धन्यवाद।